नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का भी समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायण को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यभर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी देशों के 3 देशों के दौरे के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। श्री रूबियो का ये दौरा अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई हालिया कूटनीतिक वार्ता के बाद हो रहा है। फीफा विश्व कप 2026 में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप ए के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप एल मुकाबले में इंग्लैंड और घाना के बीच मैच जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी 29 जून तक इसी तरह का मौसम रहने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अगले 2 दिन तक बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।